मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और ये कहावत गलत नहीं है, कई बार ये बात सिद्ध हो चुकी है कि अगर आप मन से हार जाएं तो फिर शायद आप कुछ नहीं कर पाते, लेकिन अगर आपका मन मजबूत है, कितनी बड़ी मुश्किल आपके सामने आ जाए उसका पार पाना फिर मुश्किल नहीं रहता। और उसका एक जीता जागता उदाहरण है सजीव सारथी। सजीव सारथी जो बचपन में पोलियो का शिकार हुए, और कई मरतबा ऐसा होता है लोग सोचते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सजीव ने एक मिसाल कायम की। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और आज सरकारी नौकरी में है, लेकिन इससे भी बढ़कर उन्होंने एक और काम किया है जिसमें उनका योगदान रहा है, उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले सजीव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है DU कम्युनिटी रेडियो के इस विशेष कार्यक्रम में।
शुक्रिया प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस काबिल समझा।
इस काबिल नहीं, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि आपने इस काबिल समझा कि हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने।
जी धन्यवाद।
अच्छा ये बताएं कि जो थोड़ा सा आप शारीरिक एक चुनौती का सामना कर रहे हैं, तो ये कब हुआ, कैसे हुआ?
जी एक साल की उम्र में ये मुझे पोलियो हुआ था, और उसका उसमें मैं वहाँ पे इतना इलाज वगैरह नहीं हो पाया, तो उसका शिकार मैं हुआ और पोलियो हुआ। लेकिन ठीक है, मेरे परिवार ने मेरे को बहुत समर्थन दिया और पढ़ाई मैंने करी। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की है BCOM ऑनर्स में, और अभी मैं नौकरी कर रहा हूँ पिछले 12 साल से। तो अब हिंदी से जुड़ने का मौका लगा है, तो युगम के साथ मिलकर कुछ अच्छा करने की सोच रहा हूँ।
आपने कहा कि आपने दिल्ली में ही पढ़ाई पूरी की, लेकिन जब आप गांव में थे तब आप बीमारी का शिकार हो गए थे, तो आप किस गांव में थे या किस राज्य में थे उस वक्त?
जी मैं मूल रूप से केरला से बिलोंग करता हूँ, और केरला के एक कोच्चि में एक छोटा सा गाँव है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। तो अब ये 4 साल की उम्र में दिल्ली आ गया था, और तब से दिल्ली में ही हूँ
जी। और अब हम देख रहे हैं कि ऊपर से हमारे हवाई जहाज गुजरा है और मैं आपके निवास स्थान पर हूँ। यहाँ जो हवाई जहाज है इनका आना जाना लगा रहता है, लेकिन हमारी बात भी इसी तरह चलती रहेगी। अभी तो हमने कहा था कि एक खास बात पर हम जिक्र करेंगे, वो ये है कि एक संस्था बनाई आप लोगों ने मिलकर जो युवा कवि हैं, हिंद युग्म, और फिर आपने एक ऐसा काम करके दिखा दिया जो कुछ लोगों ने सोचा जरूर होगा, लेकिन वो ये सोचते रह गए होंगे कि हम कैसे करें और शुरुआत किस तरफ से करें, यानी छोर हमें कौन सा मिले। तो अब मैं चाहूंगा कि आप खुद बताएं ये कारनामा क्या है।
जी ये एक्चुअली हम लोगों ने जब युगम शुरू किया था, तो हमने कोशिश ये करी थी कि युगम में कविताओं से हमने शुरू किया था, उसके बाद कुछ अच्छे कहानीकार में मिले, तो हमने कहानियों को जोड़ा इसके अंदर, कथाकार हमारे साथ आए। उसके बाद हमने इसको बच्चों के लिए एक बाल साहित्य के सृजन करने के लिए हमने बाल उद्यान के नाम से एक अलग ब्लॉग बनाया। इस तरह से हम लोग चलते रहे। अब उसके बाद फिर कोशिश हमारी ये हुई कि क्योंकि सिर्फ कविताएं लिख देने से जो कवि के मर्म है या भाव है वो पूरी तरह से कम्युनिकेट नहीं हो पाते, क्योंकि आजकल लोग कविताओं से पीछे हट रहे हैं, साहित्य से दूर भाग रहे हैं, तो हमारी कोशिश ये थी कि हम कविता को कला की हर विधा से जोड़ दें ताकि वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। जैसे संगीत हो गया, या आपका फोटोग्राफी हो गया, या आपका फिल्म हो गया, तो कविता जब हर विधा से जुड़ जाएगी तो हर विधा जो लोगों तक पहुंचती है आमतौर पर, उससे जुड़कर अधिक से अधिक लोगों को वो समझ में आ पाएगी, उसे ग्रहण कर पाएंगे लोग। तो ऐसी हमने कोशिश करी थी कि कविताओं को संगीत से जोड़ा जाए। अब संगीत से जोड़ने के लिए तो कि संगीत हर आदमी सुनता है, तो हमने कोशिश ये करी कि हम कुछ 10 गाने हम लोग रिकॉर्ड करें और उसके बाद उसके साथ 10 कविताओं को जोड़ें।
तो यानी कुल मिलाकर 20 रचनाएं हो गई, 10 कविताएं और 10 गीत जिन्हें आपने संगीतबद्ध किया।
जी जी, कविताएं जो है कविताएं वाचन उसमें है, वाचन फॉर्म में है, कि मतलब उसे हमने एक प्रोफेशनल जो बोलते हैं जैसे अच्छे जिनकी आवाज अगर अच्छी थी, तो उनसे हमने कविताएं बुलवाई।
यानी जो आपके कविगण हैं जिनमें कुछ की आवाज अच्छी है या जिनकी डिलीवरी अच्छी है, उनसे आपने ये कविताएं बुलवाई?
जी उनसे हम बुलवाना चाह रहे थे, लेकिन हम उनसे नहीं करवा पाए, तो हमने एक, क्योंकि हमारा समय बहुत कम रह गया था, हमने आखिरी स्टेज पर इस काम को किया था, तो हमें समय कम रह गया, तो हमने एक प्रोफेशनल उन्हीं से हमने ये पूरी सारी कविताएं 10 कविताएं उन्हीं के बारे में रखी है इसको। और ये जो कवि है हमारे इसके अंदर, ये सब बहुत अलग अलग जगहों से बिलोंग करने वाले हैं, जैसे गौरव सोलंकी जो है वो IIT।
सजीत जी ये तो हम आपसे जानेंगे कि कहां कहां से बिलोंग करते हैं ये कवि, लेकिन हम उससे पहले क्यों ना एक गीत सुन लें जो आपने रिकॉर्ड किया है। जी जी। और उसके बाद हम ये जानेंगे कि ये गीत कैसे रिकॉर्ड हुए और क्या प्रक्रिया रही, और वो बात जो आपने कही कि अलग अलग जगह से आपके ये कवि वो अपना नाता रखते हैं, तो बताएं कौन सा गीत आप पहले सुनवाना चाहेंगे, रचना किसकी है, आवाज किसकी है?
ये जो पहला गीत मैं सुनाना चाहूंगा ये है सुबह की ताजगी, जो क्योंकि ये गाना इसलिए मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये गाना सबसे पहला बना था, और इसी गाने की वजह से बाकी लोग हमसे जुड़े हैं, और इसी ये आप मान के चल सकते हैं कि ये गाना जो है ये बीज है जिसकी वजह से आज ये एल्बम तैयार हो पाई है। तो मैं चाहता हूँ सुबह की ताजगी आप सुनाएं, और इसे मैंने दिल्ली में बैठकर लिखा था, और हैदराबाद में इसके जो संगीतकार हैं ऋषि अजबाला जी, उनको भेजा था, और उन्होंने जो है मतलब उसका उसकी एक धुन बनाकर मुझे भेजी जो मुझे पसंद आई, तो फिर हमने इसके लिए गायक ढूंढा। तो गायक जो है हमारे पास युगम में ही एक सुबोध साठे करके एक महाराष्ट्र के गायक थे, तो उनसे हमने कॉन्टेक्ट किया, हमने बात करी उनसे कि भाई आप इस गाने को गाना चाहेंगे, तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया उस बात को। तो इस तरह से ऑनलाइन ही मतलब मैं ऋषि बालाजी से कभी मिला नहीं हूँ, सुबोध साठे से कभी मिला नहीं हूँ, तो दिल्ली में जो गाना लिखा गया वो हैदराबाद में संगीतबद्ध हुआ और नागपुर में गाया गया। तो इस तरह से ये पहला गाना जो हमारा बना था, बहुत सरल सा गाना है, लेकिन इस गाने की सरलता ने ही आगे जो काम है उसको आसान किया। तो ये इस तरह मैं चाहूंगा कि आप जरूर सुनाए इस गाने।
सुबह की ताजगी हो, शबनम की बूंद कोई, सुबह की ताजगी हो, शबनम की बूंद कोई, फूलों की पंखुड़ी पर इन्हों का प्यार
पर आप सुन रहे हैं विशेष कार्यक्रम और मेरे साथ है सजीव सारथी, जिन्होंने नेट के जरिए बहुत से लोगों को जोड़ा, खुद उसका एक हिस्सा बने, बल्कि ये कहना गलत होगा कि उन्होंने जोड़ा, ये कुछ लोग आपस में जुड़े और फिर कुछ रचनाएं सामने आई, फिर एक सीडी भी रिलीज हुई। सजीव जी, आपने कहा था कि जो आपके कवि हैं वो सब अलग अलग जगह से हैं, तो बताना चाहेंगे कि कहां कहां से आप लोग जुड़े और नेट इंटरनेट आज एक अच्छा माध्यम बन चुका है और उसका बहुत अच्छा उदाहरण आपने पेश किया है।
जी, ये हमारे जो कवि हैं ये सब आप कह सकते हैं कि अलग अलग ना सिर्फ प्रांतों से हैं बल्कि अलग अलग जिंदगी के मोर्चे संभाले हुए हैं। जैसे हमारे श्रीकांत मिश्रकांत जो है ये चंडीगढ़ में आर्मी ऑफिसर हैं, और छात्रों के मामले में कहा जाए तो ये गौरव सोलंकी जो है आईआईटी रुड़की के छात्र हैं, और विश्व दीपक तन्हा जो है आईआईटी खड़गपुर के छात्र हैं, और मनीष जी जो है इलाहाबाद से बीटेक कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास छात्र हैं, तो गृहणियां भी हैं, जैसे रंजना भाटिया जो है वो मतलब दिल्ली में है और गृहिणी है, और इसके अलावा जो है आप अभिषेक पारनी जो है ये प्रोफेशनल हैं, राजीव रंजन जी दिल्ली में काम करते हैं, महेंद्र कुमार जी दिल्ली में काम करते हैं। तो इस तरह से मतलब अलग अलग प्रांत के अलावा अलग अलग जो वॉक ऑफ लाइफ है आप कह सकते हैं उससे जुड़े हुए लोग जो हैं वो इस मिशन का हिस्सा बने हैं, और ये हमारे शैलेश भारद्वाजी जी जो हैं उनकी मतलब उनकी कह सकते हैं कि दूरदर्शी रही है कि करीब 1000 से ऊपर हमारे पास इस टाइम कविताएं हैं युगम के खजाने में, तो उसमें से उन्होंने 10 कविताएं ऐसी चुनी हैं जिनमें कुछ चमत्कारिक तत्व थे जो अपनी अपनी चमत्कारिक तत्व के माध्यम से लोगों को आकर्षित कर सकते हैं, उस तरह की उन्होंने कविताएं चुनी हैं जो मुझे लगता है काफी अच्छी कविताएं चुनी उन्होंने।
चलिए काम करते हैं कि एक कविता सुन लेते हैं पहले, गीत नहीं कविता, तो आप बताएं कौन सी कविता इसमें से सुन ली जाए।
जी मैं चाहूंगा कि गौरव सोलंकी की एक कविता है बाजार जा रही हो, ये आज के दौर की जो संवेदनाहीनता जो लोगों के अंदर आ रही है उसके ऊपर एक बहुत अच्छा कटाक्ष है, और मैं चाहता हूँ कि कविता आप सुनाएं। रूपेश ऋषि की आवाज है और गौरव सोलंकी की रचना है।
बाजार जा रही हो तो कुछ सामान लेती आना, फेहरिस्त देता हूँ तुम्हें, कुछ देर तो सब्र करो, उम्मीदों की चादर को खा गए हैं यथार्थ के चूहे, नई आशाओं का नया थान लेती आना, सिलने दे देना फटे हुए ख्वाब, कहते हैं कि बड़े चौक का दर्जी बहुत शानदार रफू करता है, एक चैन की शीशी लेती आना और कुछ नींद की गोलियां, मुस्कान का मुरब्बा और खुशी की थैलियां, बरसों से खत्म हो गया है ना सब सामान, फूट गए हैं उड़ने वाले सब पतीले और मचक गई है अरमानों की सब थालियां, प्यार का राशन तुम अकेली खा गई हो और शिकायतों की फफूंद लग गई है मीठे आचार में, जिंदा रहने की सब कोशिशें अब बुकिंग से मिलती हैं, ब्लैक में जरा सी जिंदगी लाना और मेरी सब घड़ियां थम गई हैं, मेरे वक्त में सेल डलवा लेना, आंख खोलता हूं तो देख नहीं पाता, लब खोलता हूं तो बोल नहीं पाता, कल राघव कह रहा था कि बाजार में क्लोन मिलने लगे हैं, कीमतें पता करना और सस्ता लगे तो मुझसा अभिशप्त एक लेती आना, मेरा क्या पता कब सांस छोड़ूं।
क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से जब आपने काम शुरू किया तो क्या आपके मन में कभी ये डर आया था कि जो हमने एक बीड़ा उठाया है उसमें हमें कामयाबी मिल पाएगी या नहीं?
जी पूरी तरह से डर था, मतलब आप कह सकते हैं कि आखिरी एक हफ्ते तक हम लोग नहीं पक्के नहीं थे कि ये चीज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम किसी से मिल नहीं पा रहे हैं, हमने किसी को देखा नहीं, हम किसी को जानते नहीं व्यक्तिगत तौर पर, सिर्फ ईमेल और चैट के थ्रू हम लोग बातें कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए हम आप किसी को गीत भेजते हैं, वो कहते हैं कि मैं इतने दिन के अंदर भेज दूंगा, तो अगर वो नहीं आपको जवाब दे पाता या किसी वजह से वो रुक जाता है, कहीं फंस जाता है, तो हम उसे कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ पे क्योंकि हम किसी को ना तो कुछ पे कर रहे हैं ना किसी के साथ किसी को कॉन्टेक्ट में जुड़े हैं, सिर्फ एक मानवीय रिश्ता है, एक क्या कह सकते हैं एक जुनून है कि कुछ करके दिखाना है, सिर्फ इसी वजह से जुड़े हुए हैं, वो जुनून किसी के अंदर भी आज ठंडा हो सकता है तो हमारे जो पूरा प्रोजेक्ट है वो कहीं ना कहीं हैंडल हो रुक सकता है, लेकिन ये मतलब आप कह सकते हैं कि एक प्रभु का हाथ रहा है या कह सकते हैं कि एक रूहानी ताकत पीछे रही है जिसकी वजह से हम लोग इतने चार्ज होकर एनर्जी के साथ ये सब काम कर पाए।
लेकिन कुल मिलाकर जब आप लोगों ने आदान प्रदान किया अपने विचारों का, कविताओं का, गीतों का, या जब संगीतकार से आपकी बात हुई, गायक गायिकाओं से आपकी बात हुई, तो उनका उत्साह, उसका स्तर आप क्या मानते हैं, किस तरह का था?
जी कमाल का था, मैं मुझे सच में यकीन नहीं होता कब तक मेरी जिंदगी में जितने भी लोग मुझे मिले थे आप मानेंगे नहीं कि वो सभी जो हैं वो मतलब मैंने तो ऐसे ही लोग देखे थे जो बिना मतलब अगर आप उनको पेमेंट नहीं करेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ते किसी चीज, मतलब उठ के चलने को तैयार नहीं होते, लेकिन आप मान के चलिए कि मैं जितने भी लोगों से मिला मैंने सबसे पहले यही क्लियर किया कि हम लोग एक मतलब एक पैशन के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ पैसा नहीं है, आप अगर जुड़ना चाहते हैं तभी जुड़िए, और आप मानेंगे नहीं लोगों ने यही मुझे रिस्पॉन्स दिया कि हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें काम दिखाना अपना, और ये मैं कहता हूँ मैं सलूट करता हूँ उन लोगों को कि भाई उन लोगों ने जुनून के साथ काम किया।
देखिए DU कम्युनिटी रेडियो आप लोगों को सैल्यूट करता है जिन्होंने ये अच्छा कारनामा करके दिखाया, और आप आम लोगों में से जो लोग उभर कर आए जिसे हम कहते हैं कि हमारी कम्युनिटी, उन्होंने काम करके दिखाया है। कुछ और बातें करेंगे, एक दूसरा गीत भी आपका सुनिए, सीडी का कौन सा गीत?
जी मैं एक गजल सुनाना चाहूंगा, निखिल आनंद गिरी ने इसको लिखा है, इस गजल का शीर्षक है इन दिनों, और ये गजल है इसे आभा मिश्रा ने गाया है, आभा मिश्रा जो है एक खोज कह सकते हैं आप इसको, इनको जो है बहुत अच्छी ये मैथिली में गाती थी पहले, हमने हिंदी में इन्होंने पहली बार गाया है यहाँ पे, और इनकी आवाज जो है बहुत ज्यादा सराही गई है और बहुत पसंद की गई है, मैं चाहता हूँ आप ये गाना जरूर सुनाएं, ये गजल जो है जरूर सुनाएं।
तेरी रुख सत्कार दर्द मेरा हम सफर
सजीव जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि इनकी आवाज की कशिश वो कुछ अलग तरह की है। जब आपने कविताओं का चयन किया तो उसका क्राइटेरिया, उसका आधार वो क्या रहा?
जी, कविताओं का चयन जैसे मैंने बताया कि शैलेश भारद्वाज जो एक फाउंडर मेंबर हैं हिंदी युगम के, उन्होंने सेलेक्ट किया था उनको, और उन्होंने आधार ये रखा कि कुछ चमत्कारिक तत्व हों कविता के अंदर जो मतलब लोगों को एकदम से आकर्षित भी करें और अपनी बात कम्युनिकेट करने में सफल भी हो पाए, ये आधार रहा बेसिकली।
और गीतों का चयन वो किसने किया?
जैसे गीतों के चयन के लिए बताना चाहूंगा कि जैसे जिन लोगों से मैं कांटेक्ट कर रहा था इंटरनेट के ऊपर ही, उन लोगों को मैंने थोड़ा सा स्टडी किया मैंने, तो उनका मैंने एक मतलब सोचा कि वो किस तरह की चीजें पसंद करते हैं। जैसे मुझे पंजाब लुधियाना के पेरू करके एक संगीतकार मिले मुझे, तो मैंने थोड़ा सा उनको स्टडी किया, उनके जो उनके प्रोफाइल को मैंने थोड़ा सा पढ़ा, तो उनका जो मुझे शौक लगा कि वो सूफियाना किस्म के गीत पसंद करते हैं, तो मैं एक सूफियाना मैंने गीत लिखा हुआ था, तो मैंने उस गीत को उनको भेजा और उन्होंने इमीडिएटली 10 मिनट के अंदर जो है उन्होंने मुझे वो गाना तैयार करके भेज दिया।
यानी सिर्फ 10 मिनट के अंदर?
10 मिनट में उन्होंने उसकी धुन बना दी, और उसके बाद फिर कंपोज होने में तो खैर महीना लग गया, लेकिन धुन उन्होंने जो है 10 मिनट में बना दी, तो इतना इंस्पायर हो गया। अगर आप किसी आदमी को उसके शौक के हिसाब से काम देते हैं तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा अच्छी तरह से मेहनत से काम कर पाता। तो मैंने यही किया कि सबके प्रोफाइल थोड़े से पढ़े, उनको जिस तरह के गाने सूट करते थे मैंने उस तरह के गाने उनको भेजे, तो क्योंकि मैं मूल रूप से गीतकार हूं, तो मुझे मेरे पास गीतों के कलेक्शन थे अपने, कुछ गीत मैंने लिखे भी, कुछ गीत धुनों पे लिखे मैंने, कुछ जैसे ऋषि एस बालाजी ने मुझे एक धुन दी तो उस धुन पे मैंने एक दो गाने भी लिखे, और एक नीरन कुमार करके मैं उनका नाम स्पेशल लेना चाहूंगा, नीरन कुमार जो है कोच्ची से बिलोंग करते हैं और उनको हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी, तो लेकिन मैं जब हिंदी नहीं आती थी मुझे लगा कि प्रोनाउंसिएशन वगैरह नहीं कर पाएंगे वो, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि उनको ड्रॉप कर दिया जाए, लेकिन उनके अंदर इतना जोश था कि वो चाहते थे करना चाहते थे हर हालत में, तो उन्होंने मुझे एक धुन दी कि भाई आप इस धुन पे कुछ लिखिए करके, तो मैंने उस धुन पे एक गाना लिखा बात ये क्या है जो, तो उस गाने को फिर उनको मतलब मैंने प्रोनाउंसिएशन फोन पे बताया कि आप इस तरह से इसको प्रोनाउंस करें, और जब 2-3 बार जब फोन करके उनको बताया इस तरह से, तो उन्होंने जिस तरह से गाया, आप अगर मैं नहीं बताऊं इस बात को तो शायद आप जज भी नहीं कर पाएंगे कि एक मतलब नॉन हिंदी आदमी ने गाया है, और इतनी अच्छी तरह से उन्होंने गाया है, सुनिएगा।
हम तो सिर्फ इतना कर सकते हैं कि जिस गीत का जिक्र आप कर रहे हैं क्यों ना हम अपने लिसनर्स पर छोड़े कि वो कितना पसंद करते हैं, और साथ साथ मैं ये भी बताता चलूं कि जहां आज हम बैठकर बात कर रहे हैं सजीव जी के घर में, वहां आपको शायद पार्श्व में हल्की हल्की आवाज आ रही होगी, क्योंकि हर 1-1.5 मिनट के बाद एक हवाई जहाज हमारे ऊपर से गुजर रहा है। तो गीत सुन लिया जाए।
जी, ये नीरन कुमार का गाना है, और मतलब बात ये क्या है जो एक आज की यंग जनरेशन को शायद पसंद आएगा, इस तरह का गाना है।
बात ये क्या है जो बात ही बगर हो तो पे रुक गई, अजीब है ये कश्मकश कि चुप रहूं या बोल दूं, तुम ही कहो ये राज दिल छुपा मैं
t t t
सबर तुम वहां बेखबर कब तलक ये फासले काश हो ऐसा कभी पढ़ लो तुम आके मेरी बात कुछ आगे बढ़े अजीब है ये कश्मकश कि चुप रहो या बोल दो अजीब है ये कश्मकश कि चुप रहूं या बोल दूं तुम ही कहो ये राज दिल छुपाऊं मैं या खोलूं
जीत सारथी हमारे साथ हैं डीयू कम्युनिटी रेडियो पर और इस विशेष कार्यक्रम में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से अगर आपके मन में कोई जज्बा है तो उस काम को अंजाम दिया जा सकता है। इंटरनेट के माध्यम से बहुत से कवि गीतकार संगीतकार गायक गायिका जुड़े और फिर उन्होंने अपनी एक सीडी भी रिलीज कर दी और उसी के कुछ रचनाएं हम सुन भी रहे हैं। सजी जी, कुछ देर पहले आपने जिक्र किया था जो चंडीगढ़ के आपके साथ ही थे, 10 मिनट के अंदर उन्होंने एक प्रारूप तैयार कर दिया, एक धुन तैयार कर दी, वो कौन सा गीत है?
जी, वो एक सूफियाना गीत है, मुझे दर्द दे। तो वो प्रारूप जो है वो मतलब वैसे संगीतकार है, वो एक किसी संगीतकार के असिस्टेंट के तौर पर काम करते थे अब तक। तो आप मानेंगे कि ये उनका पहला सेल्फ कंपोज सॉन्ग है, मतलब उनके अपने लिए उन्होंने जो गाना किया ये पहला गाना है उनके लिए। उनको भी मतलब उनके लिए बहुत प्रिय है गाना ये और मुझे भी खुद बहुत व्यक्तिगत तौर पर बहुत पसंद है गाना ये। और इसको जो है उन्होंने उनके अपनी मंडली के कुछ सूफी सिंगर थे तो पंजाबी लहजा है उनका थोड़ा सा, उन्हीं सिंगरों से उन्होंने गवाया है इसको। ये भी आप मान के चलिए कि ये गाना भी लास्ट मोमेंट में हमारे पास आया था क्योंकि इसकी उम्मीद नहीं थी क्योंकि पेरू बहुत ज्यादा व्यस्त हो गए थे अपने किसी दूसरे कामों में। तो लेकिन उन्होंने 20 में 3 दिन का उनको टाइम मिला, उस 3 दिनों में उन्होंने इस गाने को कंप्लीट करके मुझे भेजा। तो वो चाहते थे कि ये गाना जरूर आए इसके अंदर।
आपने पहले कहा था कि बिना पैसे लिए दिए ही ये सारा काम हुआ, किसी ने पैसे की मांग नहीं की, लेकिन इस पूरे प्रोसेस के दौरान क्या कभी किसी ने कोई हल्का सा भी इशारा किया कि भाई थोड़ी बहुत अगर पेमेंट हो जाए तो ठीक है, ठीक रहेगा?
जी बिल्कुल नहीं प्रदीप जी, आप यकीन मानिए बिल्कुल किसी ने भी इस तरह का कोई, बल्कि मैं तो जो लोग जैसे मैं जेम सोरेन के बारे में बात करना चाहूंगा, लखनऊ के हैं वो मूल रूप से, तो उन्होंने गाना बनाया सम्मोहन करके। तो उस गाने को उन्होंने जब उनको नॉलेज नहीं थी मतलब सॉफ्टवेयर की, तो उनको सॉफ्टवेयर की नॉलेज जो है मैंने ऋषि एस बालाजी से मैंने उनको सॉफ्टवेयर की नॉलेज दिलवाई। सॉफ्टवेयर उन्होंने खरीदा, उन्होंने कंप्यूटर नहीं था घर पे, उन्होंने इस काम के लिए कंप्यूटर खरीदा घर पे और मतलब सॉफ्टवेयर खरीदा, उसके बाद सीखा उस चीज को और उसके बाद उन्होंने कंपोज करके भेजा। लेकिन उनकी मिक्सिंग अच्छी नहीं थी तो मैंने बार बार उनको टोका कि मिक्सिंग अच्छी नहीं, तो उन्होंने रीटेक करके 2-3 बार रीटेक करके उस गाने को दोबारा भेजा। तो आप मान के चलिए कि लोगों ने पैसा लेने की बात छोड़ी, उन्होंने खुद पैसा लगाकर लोगों ने यह काम किया है, तो ये उनका जुनून है।
आपको क्या लगता है कि अब अगर आप एक दूसरी सीडी या किसी दूसरे प्रोजेक्ट पर काम करेंगे या वो शुरू करते हैं तो इन सबका सहयोग आपको पहले की तरह मिलेगा या कुछ लोग आपको लगता है कि अब ज्यादा व्यस्त हो गए हैं या अब बहुत ज्यादा रुचि नहीं ले रहे?
नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी संगीतकार हमारे साथ जुड़े हैं, ये सब संगीतकार अभी तक तो इनका एक प्रीव्यू टाइप का है कि इन्होंने एक अपना एक एक गाना इस एल्बम में दिया है, एक या दो गाने इन्होंने इस तरह से एल्बम में दिए हैं, लेकिन अब ये चाहते हैं कि सबका इनका सोलो एल्बम हिंदी में रिलीज करें। तो ये मतलब इतनी व्यक्तिगत तौर पर कह सकते हैं या आप कह सकते हैं कि जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हमारे इस मिशन के साथ जुड़ चुके हैं कि उनका मन है कि हमारे साथ और काम करें, क्योंकि ये कोई भी जो है पूरी तरह से प्रोफेशनल में कोई भी नहीं है, सब लोग शौकिया तौर पर काम कर रहे हैं, तो शौकिया तौर पर उनकी एक चीज बाहर आ रही है, लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये उनके लिए एक उनके लिए भी अच्छी बात उन्हें लगती है और वो जुड़ना चाहते हैं और ज्यादा काम करना चाहते हैं।
तो सजीव जी, क्यों ना पहले एक हम कविता सुन लें और उसके बाद सोरन साहब का गीत सुन लेते हैं जिनका जिक्र आपने किया है।
जी, एक मनीष वंदे मातरम हमारे एक उभरते हुए कवि हैं और मैं चाहता हूं कि एक कविता जो है होता कभी यूं भी, देखिए बहुत सुंदर कविता है, आप मैं चाहता हूं जरूर सुनवाएं इसको। रूपेश ऋषि की आवाज अगेन है और मनीष की कविता है, आप सुनाइए इसको।
और उसके बाद सोरन साहब का गीत।
हाँ जी, सोरन साहब का गीत है वो, मैं चाहता हूँ कि आप सुनाएं।
होता यूं कभी कि घर से बाहर निकलता मैं टहलने को और वापिस लौटना ही भूल जाता, फिर घर मुझे ढूंढता हुआ आता और कहता कहां चले जाते हो बिना बताए, या यूं कि टहलते टहलते निकल जाता मैं नए पुल की तरफ और चुंगी का बैरियर मुझे रोकता, मुझसे टोल टैक्स मांगता 10 रुपया प्रति दोपाया वाहन, ऐसा कि कोई किताब खोलता पढ़ने को और हर्फ हर्फ मिट जाता उसका, फिर किताब मुझे पढ़कर खुद को लिखती, एक शाम बोटिंग करता रहता बोरियत दूर करने को कि नदी आकर बैठ जाती नाव में और मैं बहता। होता कभी यूं भी भूल जाता मुझसे मेरा सारा लिखा पढ़ा, मैं आदमी बन जाता फिर से एकदम पूरा।
सपनों के पंखों से उड़ने लगता है मन, रंग भरे अंबर में उड़ने लगता है मन, ऐसा है तेरे नैनों का सम्मोहन, सम्मोहन सपनों के पंखों से उड़ने लगता है मन, अंग भरे अंबर में उड़ने लगता है मन, ऐसा है तेरे नैनों का सम्मोहन, सम्मोहन Thank you. जिनमें दिल की बस्ती है, पीले भवन है तो गहरे से, लहरों में भीनी भीनी मस्ती है, होठों से जो चुक ले तो बहने लगता है मन, दो घूंट में ही नशे में धड़कता है मन, ऐसा है
मुश्किल ये हो गई थी कि हमारे 10 गाने हम जो सोच रहे थे करने के, 10 गाने हमारे पूरे नहीं हो पा रहे थे और कुछ मतलब अड़चनें आ गई थी, कुछ लोग जो जुड़ रहे थे पहले लेकिन कई कारणों में व्यस्त होने की वजह से वो काम नहीं कर पा रहे थे, तो फिर जो है हमने निखिल से भी गुजारिश करी कि आप कोई अपनी गजल जो है कंपोज करवाएं इस तरह से, तो निखिल जो है उन्होंने अपनी गजल दी सुबह जीता हूँ, और ये जो गजल है इन्होंने आभा मिश्रा से अगेन टीम अप करके इस गजल को गवाया, और ये गजल आप सुनिएगा और मतलब बहुत खूबसूरत गजल बनी है ये।
इस गजल में मुख्य तौर पर क्या आपने देखा जो आपको ये बहुत पसंद आ गई?
देखिए क्या होता है कि जब आप एक स्वरबत करने के लिए आप गजल लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि बहुत कम शब्दों में आपको बहुत ज्यादा बातें कहनी होती हैं, जो शुरुआती शेर है उसका वो भी आप रखें तो उसमें कम से कम एक जो मिसरा है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 शब्द होने चाहिए, तो मतलब इस तरह के एक छोटे फॉर्म में लेकिन बड़ी बात कहने वाली गजल होनी चाहिए थी, तो उसी तरह की गजल थी और इसके अंदर बहुत बहुत दिल को छूने वाली बातें थी, तो जो एक अच्छा अगर गायक मिल जाए तो और भी निकल के चीजें बाहर आ जाती हैं, और जैसे मैं कहना चाहूंगा कि आभा ने पूरा न्याय किया है इस गजल के साथ, और इसलिए मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है ये गजल जो है।
अगर हम इस सीडी की बात करें तो आपकी सबसे पसंदीदा रचना कौन सी है?
कहना बहुत मुश्किल है ये प्रदीप जी, क्योंकि सभी रचनाएं मेरे दिल के बहुत करीब हैं, क्योंकि मैं पूरे प्रक्रिया से जुड़ा हूं।
आप ये मत कहिएगा कि जो माँ बाप है उनको सब बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक के प्रति आपका स्नेह या ममता थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है।
इस तरह से अगर मैं कहूं तो जो ये झलक गाना है, झलक गाना जो है ऋषि एस बालाजी और सुबोध साठे की मेरी जो टीम थी उस टीम ने मिलकर जो बनाए थे गाने, उनमें तीसरा गाना था ये, और ऋषि एस बालाजी और सुबोध साठे के साथ हमने जब पहले 2 गाने बनाए थे और तीसरे गाने में आते आते वो चीज और भी इम्प्रूव हो गई, तो कहने का मतलब है कि ऋषि ने और ज्यादा मेहनत करी और ज्यादा नए नए वाद्य यंत्र वगैरह इस्तेमाल किए इस गाने के अंदर, तो ये अपने आप में एक मुकम्मल गाना जिसे आप कह सकते हैं बना है, और उसमें सुबोध ने भी आवाज को बहुत अच्छी तरह निकाल के डाला है, और कोशिश हमने ये करी कि हर गाने में बहुत ज्यादा वैरायटी रखी जाए और हर गाने में कुछ नया किया जाए जो पुराने गाने में नहीं था, तो इसी तरह से जो झलक गाना है ये मुझे पसंद आया काफी इस तरह से।
एक अहम बात सजीव जी, क्योंकि DU कम्युनिटी रेडियो ये हमारी कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है, हमारे बहुत से ऐसे लिसनर्स होंगे जो अब ये कार्यक्रम सुनते सुनते सोच रहे होंगे कि भाई हम में भी कुछ ऐसी प्रतिभा छुपी हुई है, तो क्या सजीव साहब या जो इनकी टीम है या हिंद युग्म है वो उनकी रचनाओं को या उनकी प्रतिभा को भी सामने लाने की कोशिश कर सकता है?
जी, हिंदी युग्म तो मंच है आप सब लोगों का, हिंदी युग्म तो कोशिश यही कर रहा है कि अधिक से अधिक रचनात्मक लोग हमारे साथ जुड़े और अपनी बात जो है लोगों तक पहुंचाएं, तो मैं चाहूंगा कि जो भी अगर कोई गायक है या कोई गीतकार है या कोई संगीतकार है वो सिर्फ hindiyugm.com पर आए, और पता है www.handyugm.com, इस पे आप आ सकते हैं, और आपको सिर्फ शर्त यहाँ पे यही है कि आपको हिंदी में काम करना है, और हिंदी में काम करना कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं अभी तो हम इसकी फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, हिंदी में जो है इसकी एक मुफ्त में इसका प्रशिक्षण देता है, तो आपने सिर्फ अपना ईमेल हमें कर सकते हैं सिर्फ handyugm@gmail.com पे आप हमें कर सकते हैं, मेरा पर्सनल जो ईमेल आईडी है वो है sajeevsarathi@gmail.com, इस पे भी आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और अगला जो भी हमारा काम प्रोजेक्ट होगा उसमें हम यही कोशिश करेंगे कि हमें खासतौर पर हमें गायकों की बहुत जरूरत है, गायकों और गायिकाओं की हमें बहुत जरूरत है, क्योंकि हम कुछ ऐसे गाने बनाना चाह रहे हैं जो एक वैरायटी वाले गाने हो। अब आप मैं थोड़ा सा बता दूं कि हम जो अगले प्रोजेक्ट है हमारे उस प्रोजेक्ट में हम एक काम करना चाह रहे हैं कि एक ऐसा मैं गाना बनाना चाह रहा हूं जो जिसके अंदर कम से कम 10 कवि हों, आप मान के चलिए कि 10 लोग लिख रहे हैं गाने को, मतलब एक एक छंद है उसके अंदर, एक एक छंद जो है 10 लोगों का लिखा होगा, मतलब 10 छंदों को मिला जाकर एक गीत बनेगा।
चलिए हम भी अपने लिसनर से ये कहना चाहेंगे कि अगर आप भी अपनी प्रतिभा को सामने लाना चाहते हैं तो हम ये आपको वादा करते हैं कि सजीव सारथी तक आपका संदेश जरूर पहुंचाएंगे, आप हमें भी खत लिख सकते हैं, हमारा पता है DU कम्युनिटी रेडियो, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं और हमारा ईमेल आईडी है dufm90.4@gmail.com। हमारे साथ हैं डीयू कम्युनिटी रेडियो पर, हमारी कम्युनिटी से यानी समुदाय से एक ऐसे सदस्य कह सकते हैं जो हमारे साथ हैं जिन्होंने बहुत सी चुनौतियों का सामना किया, लेकिन अब शायद लगता है कि सबके सामने एक ऐसी चुनौती भी रख दी है जो आपको कुछ काम करने के लिए उकसाएगी या प्रोत्साहित करेगी, क्योंकि आपने एक ऐसा काम किया है यानी एक दल ने मिलकर, हिंद युग ने मिलकर इंटरनेट के माध्यम से कवि, गीतकार, संगीतकार, गायक, गायिकाएं सबको जोड़ा, गीत रचे और उसके बाद एक सीडी भी आप लोगों ने निकाली है। सजीव, सच कहूं, जब मुझे आपके बारे में पता लगा मुझे विश्वास नहीं हुआ था।
जी क्या कहूँ मैं। हाँ जी, बहुत बहुत लोगों ने इस तरह से रिएक्ट किया कि भाई मतलब उनको मतलब आप मानेंगे नहीं, जब हम बुक फेयर में हम लोग स्टैंड हमारा चल रहा था तो आप मान के चलिए कि बहुत मुख्तलिफ चैनलों ने हमें कॉन्टैक्ट किया वहाँ पे और आए हमारे पास लोग देखने के लिए। तो जब उनको ये अपने प्रोसेस वगैरह बताया तो उन्हें उन्हें यकीन नहीं हुआ मतलब कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बहुत लोगों ने जब सुना समझा कि हाँ ऐसा हुआ है, वाकई में ऐसा हुआ है, तो उन्होंने इस चीज़ को बहुत सराहा और अपने मतलब पत्रिकाओं में या अपने समाचार पत्रों में या अपने मीडिया में उन्होंने उसको स्थान दिया। और ये मतलब आप मान के चलिए कि बहुत लोगों ने इसको सराहा, इस प्रक्रिया को सराहा। और मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें और भी होनी चाहिए, और भी लोगों को इस तरह के काम करने चाहिए ताकि जो टैलेंट है जो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, उनको एक मौका मिलना चाहिए कि अपना अपने आप को एक अच्छे स्तर पर रख सकें।
इस सीडी के रिलीज होने के बाद आपको किस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है, लोगों का फीडबैक वो आपको कैसा मिल रहा है?
फीडबैक बहुत अच्छा रहा है। मतलब कुछ एक आध मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे एक सज्जन हमारे पास बुक फेयर में आए थे, उन्होंने सीडी खरीदी तो उन्होंने टाइम पर उन्होंने कुछ ज़्यादा एडिक्शन नहीं दिया, लेकिन घर जाकर उन्होंने मुझे स्पेशली फ़ोन किया। कहते हैं कि जब मैंने सीडी खरीदी मैंने सिर्फ आपके एक आपके जो मिशन है उस मिशन की कामयाबी के लिए मैंने सीडी खरीदी, क्योंकि मुझे संगीत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने हमारा पहला ही गाना सुना तो कहते हैं मैं तो पहले गाने में खो गया हूँ। तो इस तरह का उनका रिएक्शन था जो बहुत ही मतलब एनकरेजिंग था। और उसके अलावा एक लखनऊ के आई थी लेडी, उन्होंने कहा था कि जो उनको सम्मोहन वाला जो गाना था वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया। और इसी तरह से लोगों ने अलग अलग तरह के, और जो गज़ल जो है तो आबा मिश्रा की जो आवाज़ है उसको तो बहुत ज़्यादा सराहना मिली है। लोगों ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया कि उनकी आवाज़ वाकई बहुत अच्छी है और कई अच्छे स्तर पे भी उनका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह के अच्छे फीडबैक मिले, बहुत अच्छे फीडबैक मिले हैं।
संजय जी, हर कार्यक्रम का एक समय नियत होता है, आपने भी इसका एक समय नियत किया होगा, तो अब मुझे लगता है कि डीयू कम्युनिटी रेडियो की तरफ से आपका धन्यवाद करूं मैं और आपसे विदा लूं। लेकिन चलते चलते आप कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे अपनी इस प्रिय सीरीज से?
चलते चलते मैं चाहूंगा कि जो पेरू वाला गाना है मुझे दर्द दे, जो मैंने कहा जैसे व्यक्तिगत तौर पर मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है। और ये गाना एक सूफियाना अंदाज का गाना है और मैं चाहूंगा कि आप ये गाना जरूर सुनाएं जाते जाते।
और चलते चलते सच दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रदीप जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
और अब प्रदीप शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
बेदारियों को रंग तू दर्द दे, रूह की बेदारियों को रंग तू दर्द दे। मैं मांगू खैर खुदाई मुझे दर्द दे, मुझे दर्द दे। मुझे गम की धूप में दे जला, कांटों पे सुला शोलों पे चला, बेशक तूने मेरा इंतहा पर दे। दर।